बात कहाँ से शुरू हुई थी? सेल्फ प्रेजिंग, खुद पसंदी, मुतकब्बिर। जो तकब्बुर करता है ना, वो किसी दूसरे को खातर में नहीं लाता, और ये बुनियादी चीज़ है जिसके बाद फिर हम दूसरों पे जुल्म करते हैं। अब जुल्म की डिफरेंट फॉर्म्स, जिसमें सबसे पहली चीज़ हसद। हसद क्या है? किसी की नेमत को देखकर नेमत देने वाले से नाराज़ होना। मुझे ऐसे लगता है कि हसद क्या है कि आप अल्लाह ताला की बांट पे नाराज़ हैं, उसको क्यों दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, और वो कोई ज़्यादा हकदार था। और हकीकत यह है कि कुल्लु ज़ी नेमतिन महसूद, अल्लाह के नबी ने फरमाया, हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। और जितना ज़्यादा किसी भी नेमत का एक्सपोजर ज़्यादा होगा, उसको ज़्यादा दूसरों के अंदर दिखाएंगे, बढ़ाएंगे, उतना हसद होगा। खूबसूरती वाले से भी हसद किया जाता है, माल वाले से भी हसद किया जाता है, दौलत वाले से भी, इल्म वाले से भी, और इसी तरह से हर नेमत का हिसाब है। अपने आप को बचा के रखने का तरीका ही यह है कि इंसान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहे। और अगर आपके मेरे दिल में किसी के लिए हसद आ जाता है, तो बिलीव मी, इससे बचने के लिए तो पहली फुर्सत में काम कीजिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लम ने इसके बारे में जो कुछ बताया है, अगर आप उसको पढ़ के महसूस कर लें, तो उसके बाद तो दिल चाहेगा कि किसी के बारे में सोचें भी ना, किसी से मैं कुछ ना कहूँ, कोई मुझसे ना कहे। क्यों? आपने फरमाया, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे सूखी लकड़ियों को आग खा जाती है। कभी आप इसको इमेजिनेशन में रखें और एक एक्टिविटी बनाएं कि कहीं बहुत खूबसूरत बाग था, जंगल, और आहिस्ता आहिस्ता वो लकड़ियाँ, वो सब्ज़ा सूखता गया, लकड़ियाँ बनती गईं, और फिर एकदम कहीं से चिंगारी निकली और आग लगी और सब जल गया। ऐसे ही हमारी नेकियों का बाग भी हसद की वजह से सूखने लगता है। हम दूसरों से जब हसद करते हैं ना, तो सबसे पहले तो हमारी नेकियों में से स्पिरिचुअलिटी चली जाती है, रूहानियत ही कोई नहीं है। दिल तो किसी आग में जल रहा है, आपको जहन्नुम क्या कहाँ याद आएगी? और एंड पे फिर नतीजा क्या निकलता है कि आमिलतुन नासिबात, बड़े ही बदनसीब हैं वो लोग क़यामत के दिन, जिनको बहुत सारी नेकियां करने के बावजूद ये खबर सुनने को मिलेगी कि तुम्हारी तहज्जुदें, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोज़े, तुम्हारा ये सीखना सिखाना सब जल के राख हो गया उस हसद की वजह से, जो किसी इंसान से करते थे, किसी गिरोह से करते थे, या किसी और को। और जो हदीस है वो अबू दाऊद की है, इय्याकुम वल हसद, हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ियों को खाती है। और आपने फरमाया कि हसद ना करो, इय्याकुम व जन्ना फ़इन्न जन्ना उकदिबल हदीसी वला तहस्ससु वला तजस्ससु वला तहासदु। तो इसमें भी हसद की बात है। और हसद करने वाले से अल्लाह की पनाह मांगनी है, कैसे? कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्री मा खलक व मिन शर्री गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ्फासात फिल उक़द व मिन शर्री हासिदिन इज़ा हसद। सूरत फलक आयत नंबर 5। और फिर याद रखिए कि हसद करके बंदा किसी का नुकसान नहीं करता अपने नुकसान के सिवा। सूरत निसा 54, अम यक्सदूनन्ना सा अला माताहु मिन फदली, क्या ये लोगों से हसद करते हैं इस पर जो अल्लाह ने इन्हें अपने फजल से दिया? तो अल्लाह के फैसलों पे नाराज़ होना है हसद करना। और आपने फरमाया, निसाई की रिवायत 3109, यानी अब हसद का नुकसान क्या है दूसरा? ला यजतमियान फी कल्बि अब्दिन अल ईमान वल हसद, आदमी के दिल में ईमान और हसद जमा नहीं हो सकते। ईमान होगा तो हसद नहीं होगा, और हसद आ गया तो समझिए कि ईमान चला गया है। इब्ने माजा की रिवायत है 4216, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सवाल किया गया लोगों की तरफ से कि लोगों में सबसे अफजल कौन है? आपने फरमाया, अब लिख लीजिए और अपने लिए ये गोल बनाइए, कुल्लु मखमूमुल कल्ब सदूकिल लिसान, कहा कि हर साफ दिल ज़ुबान का सच्चा। लोगों ने कहा ज़ुबान के सच्चे को तो हम जानते हैं। फ़मा महमूमुल कल्ब, महमूमुल कल्ब क्या है? काला, अब इसको गोल बनाइएगा। हुवा तकीयुन नकीयु, ये तो वो है जो परहेजगार है। मुत्तकी, नकी साफ सुथरा, साफ दिल वाला। ला इस्मा फीही, कोई गुनाह उस दिल में ना हो। वला बख्श, ना बगी यानी बगावत। वला गिल्ला और ना बुगस, गिल बुगस। वला हसद और ना हसद हो। इब्ने माजा 42:16। क्या पता चला कि हसद से बचाना है अपने आप को। नेमतों को छुपा के रखिए, बहुत ज़्यादा इसका एक्सपोजर नहीं करना। आप चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई नेमत है और कोई आपसे कोई हसद ना करे, तो इलाज क्या है? दुआएं पढ़िए, सुबह शाम की दुआएं पढ़िए। सूरत नास फलक जो भी हमने देखी उसको पढ़िए। फिर इसी तरह से आप देखिए कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को खोल खोल कर ना दिखाएं। आज दुल्हन को सर से पांव तक सजा संवार कर स्टेज पे बिठा देते हैं, कितनी नज़रें पड़ती हैं? क्या सारी प्यार की नज़रें होती हैं? कितनी हसद की, कितनी तकाबुल की, कितनी नज़रें बद की। तो फिर अगर घर टूटें तो फिर वजह शायद ये भी हो सकती है। और याद रखिए कि पहले ही अमलों की पूंजी बड़ी थोड़ी है, और अगर उसमें से भी कुछ इधर उधर निकल गया तो बाकी क्या बचेगा? तो हमेशा अपने आप को बचाएं। और फिर इसी तरह से याद रखिए, जिसको कुछ मिला क्या ये उसका फ़ैसला था? नहीं। हज़रत यूसुफ़ की मिसाल कुरान पाक में बेहतरीन है। भाइयों ने हसद किया किस पे? मोहब्बत पे। इब्लीस ने हसद किया आदम को जन्नत में दाखिल किए जाने पे, क्या ये आदम का फ़ैसला था? और अगर बाप के दिल में यूसुफ़ की मोहब्बत डाल भी दी थी, अगर बिलफर्ज भाइयों का इल्ज़ाम सच्चा भी था, तो क्या ये यूसुफ़ के हाथ में था? आज भी आपको अगर कभी किसी के बारे में महसूस हो, सबसे जो प्रैक्टिकल चीज़ करनी चाहिए मुझे आपसे वो क्या है? आपको कैसे पता चले कि आपको किसी से हसद है? पहली बात है उसकी नेमत देखकर खुश ना होना। लोग उसकी तारीफ़ करें आप दिल में कोड़ें, हाँ आपको क्या पता, सब तो मैं हो करती हूँ, ये तो मेरी चीज़ है, ये ऐसे ही है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि उसके जवाल की दुआ करना या तमन्ना करना। एक होता है बंदा कहता है किसी को मिला, क्यों मिला? दूसरा दर्जा होता है किसी को मिला मुझे भी मिले, यानी उससे छीने और मुझे मिले। सबसे बदतरीन हसद है कि मुझे मिले ना मिले इसका ख़त्म हो, ये हसद है। खिप्ता भी कहते हैं वो, जिसमें इंसान थोड़ा बहुत 19-20 के साथ लगा रहता है, अपने आप को दूसरों के साथ जोड़ते जड़ाते। तो हमेशा से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे अपने ख़जानों से दे। क्या अल्लाह के पास ख़त्म हो गया हुसन? क्या अल्लाह के पास बेटे ख़त्म हो गए, औलाद ख़त्म हो गई है? आप कहें अल्लाह जो तूने किसी को जो दिया तो मुझे भी दे दे, उसको मिले उसका रहे, मैंने उसका लेकर करना क्या? और अमूमन देखिए कई ऐसी चीज़ों में हसद होता है कि आपका उससे कुछ लेना देना नहीं, जस्ट फॉर योर नेगेटिविटी। उसको क्यों मिला, उसको क्यों मिल गया? और दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, यानी आप देख लीजिए कि जो चीज़ आपके पास अल्लाह की नेमत होती है ना, वही आजमाइश बनती है। यूसुफ अलैहि सलाम खूबसूरत थे ना, कहने चाहिए कि ये खूबसूरती जेल में ले गई है ना, क्योंकि वो खूबसूरती थी। तो जब भी अल्लाह से कोई नेमत मांगे ना, तो साथ ही कह दें कि अल्लाह इस नेमत के साथ मुझे आजमाइश से बचाना, मुश्किलात में बचाना। फिर इसी तरह से दिल को बड़ा करें, अपनी चीज़ों को देखें। अगर किसी से हसद महसूस हो ना, तो अपनी खैर को देखना शुरू करें। और मैंने जैसे अर्ज़ किया था आपसे, DQ10 दौरा कुरान 2010, उसका पूरा थीम प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल था, तज़किया नफ्स। पहले पारे का टॉपिक ही हसद था, और पूरी सूरत के जो भी हिस्सा है उस पारे में उसको रख के दिखाया था कि कैसे बनी इसराइल ने हसद किया और अल्लाह ताला ने फिर उनको इस चीज़ की सज़ा दी थी। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह दिल को पाक कर दे, भी न्याज कर लें। अब यहाँ फिर अपने आप को सोचें, सेल्फ प्रेजिंग, खुद को बड़ा समझना, उससे क्या हुआ? हाँ हाँ, इसको क्यों मिल गया, मुझे मिलना चाहिए था। फिर उसी से जुल्म होगा। हसद के साथ जो चीज़ हमारे दिलों में आएगी वो क्या होगी कि आप इसको किसी तरह नुकसान दें, और नुकसान देने वाली चीज़ों में एक चीज़ धोखा, धोखा कर देना। धोखा क्या है? डिसीविंग। किसने किसको धोखा देना है, क्या है सबसे बड़ा धोखा बंदे को रब के बारे में? سورہ انفطار آیت 6، یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا، یعنی انسان کا دھوکہ کہ اللہ کے بارے میں کہ اللہ مجھے نہیں بخشے گا، اللہ نے بڑا مشکل دین دیا اور اللہ ایسا، یہ تو اتنا پیارا انداز ہے جیسے کوئی دوست دوست سے کہے تمہیں میرے بارے میں کس نے بدگمان کر دیا، یا یہ کہنا اللہ نے تو بس آگ میں ہی ڈالنا، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بہت ہی پھر زیادہ نے لیے لازم سمجھ لینا، یہ ساری چیزیں اللہ کے معاملے میں دھوکے. دوسرا دھوکہ جس میں انسانوں کی اکثریت ملوث ہے، دنیا کا دھوکہ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان. سورہ آل عمران 185، کل نفس ذائقت الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُخْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور حقیقت ہے کہ یہ کھیل تماشے ہیں. سورہ حدید آیت 20 بھی لکھ لیں، تو دنیا کا دھوکہ سب سے برا دھوکہ ہے اللہ کے ساتھ دھوکے کے بعد. تیسرا دھوکہ انسان کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے، بلکہ اس کا ایک اور ریفرنس بھی نوٹ کریں دنیا کے دھوکے کا، سورۃ انعام 70، اور وہ کیا ہے، دین کے نام پہ دھوکا. یہ بڑا ہی بدترین دھوکا ہے. لوگ دین کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں. سورۃ الاعراف 51، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا. پھر اسی طرح سے سورہ جاسیہ 35، وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق بنایا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. دھوکہ دینے والا یہ کون ہے؟ شیطان. جیسے اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا، الرحمن الرحیم، ال کے ساتھ، شیطان کا ایک نام ہے الغرور. سورۃ لقمان 33، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں نہ ڈال دے. شیطان کیا دھوکہ دیتا ہے؟ تم ادھر ہی رہو. نمبر ایک، دھوکہ دیتے ہیں وعدوں کے ساتھ. سورۃ بنی اسرائیل 64، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کے سارے وعدے دھوکے کے سوا کچھ نہیں. دھوکہ دینے والی چیزوں میں دوسری چیز ہے پرفریب باتیں، زخرف القول غرورا. سورۃ انعام 112، آٹھویں پارے کی پہلی آیتوں میں چکنی چپڑی باتیں، میٹھی باتیں. آج دیکھیں جتنا مارکیٹنگ کا بزنس ہے دھوکہ، چیز کو کیا بنا کر پیش کرتے ہیں، تھوڑی چیز کو اتنا. جو نیٹ بزنس دیکھیے 80% چیزوں میں دھوکہ ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نعوذ باللہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. کیسے؟ ترمذی 2404، ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ نکلیں گے اور دین کو دنیا کے ساتھ طلب کریں گے، اور طلب دنیا کے لیے دین کے کمال حاصل کریں گے. اللہ کی بنائی اس حدیث کو تو سننے سے پہلے پانی پینا پڑے گا. دین کے نام پر کیسے دھوکا؟ پہلے بات، دین میں سے دنیا کی طلب، پھر کمال لیں گے دنیا کا، پھر لوگوں کو دکھانے کی خاطر دمبوں کی کھالیں پہنیں گے، یعنی بظاہر بڑا موٹا جوٹھا پہنیں گے کہ لوگ ہمیں نیک سمجھیں. نرمی میں ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی، لیکن ان کے دل بھیڑیوں سے زیادہ بدتر ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم میرے ساتھ مغرور ہو یا مجھ پر جرت کرتے ہو؟ سو میں اپنی ذات مقدس کی قسم کھاتا ہوں، میں ان کے لیے ایسا فتنہ اٹھاؤں گا کہ ان کا عقل مند بھی حیران رہ جائے گا کہ وہ کیا میرے ساتھ غرور کرتے ہیں یا مجھ پر جرت کرتے ہیں. کیا پتہ چلا کیسے لوگ، جن کو لوگ بہت نیک سمجھیں گے لیکن وہ اصل میں نیک نہیں ہوں گے، کوئی دنیا کا مفاد ہوگا. دیکھیے، مفاد پیسے کا نہیں ہوتا. اونلی منی از ناٹ دا پروفٹ، حب جاہ، آنر، آپ کے ہاتھ میں چابی، آپ کی اپنی مرضی، آئی ایم ایٹ مائی اون. اب یہ سب چیزیں کیا دکھتی ہیں کہ اس میں ٹھیک ہے، اٹس فائن. آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے آپ کو مجھے ان ساری چیزوں کے پڑھنے کے بعد اپنا محاسبہ کرنا نہیں سکھا رہے. دل کر رہا ہے کسی اور جگہ دیکھنے کو؟ ہے کوئی اور دامن جس کے اوپر کچھ دھبے دکھے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ پڑی جو اپنے عیبوں پہ نظر، زمانے میں کوئی برا نہ رہا. आज हम दूसरों को देखने में बहुत खुशियां महसूस करते हैं, लेकिन अपने ऊपर देखना सबसे बड़ी बात है। और याद रखिए कि ऐसे ही धोखों में से एक बहुत बड़ा धोखा रियाकारी। देखने में ये लगे कि आप ये काम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, लेकिन दिखावा दुनिया को दिखाने के लिए। तो रियाकारी भी एक बहुत बदतरीन अखलाक की किस्म है। सूरत बकरा 264, अल्लाह सुबहान तआला ने ऐसे लोगों की बात की, कल्लज़ी युन्फिकु मालहु रिया अन्नासी वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। लोगों में कुछ ऐसे भी हैं कि जो दिखावा करते हैं लोगों को, जाहिर क्या लगता है कि वो अल्लाह के रास्ते में लगे हुए हैं, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च कर रहे हैं, लेकिन मकसद क्या था कि लोग देख लें। सवाल पैदा था कि रियाकारी कैसे की जाती है। निसा 38:39 फरमाए, ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, जो कुछ उनको अल्लाह ने दिया है उसमें से खर्च करते हैं, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए। शो ऑफ करना, एक्सपोजर करना, फ्लॉन्ट करना। फिर इसी तरह ये किन की अलामत है दिखावा करना? मुनाफिकों की। सूरत निसा 142-143, इन्नल मुनाफिकीन युखादिउन अल्लाह व हुवा खादिउहुम। और ये मुनाफिक हैं जो अल्लाह के साथ धोखाबाजी करते हैं, और वो सारी बात जो मजबजबी नबई नजालिका ला इला हाउलाई वला इला हाउलाई। याद रखिएगा इस बात को भी, ये जो मिसाल कुरान में दी गई ना, इसको पढ़ने के बाद तो वाकई हमें अपना मुहासबा करना पड़ता है। आप देखिए कि ये जो बात है कि मुनाफिक दो कश्तियों का सवार होता है, अक्सर सुनते हैं बोलते हैं, कभी समझ नहीं आती ये बात, लेकिन ज़रा सा गौर करें ना तो तौहीद क्या है? एक रब पे नज़रें लगाना। मुनाफिक कौन है? रब के साथ दूसरों पे भी नज़रें लगाता है। और ये कब होता है? जब अल्लाह पे पूरा यकीन नहीं होता, एतमाद नहीं होता। फिर इसी तरह से आप देखिए सूरत हूद 15 और 16, कि रियाकारी कब की जाती है? जब बंदा आखरत के लिए की गई कोशिशों का सारा हिस्सा इस दुनिया में लेना चाहता है, अल्लाह कहते हैं उनका सब ज़ाया होगा, और रियाकारी का नुकसान, सारा कुछ ज़ाया, पकी पकाई हंडिया गिर गई। फ़वैलुल्लिल मुसल्लीन अल्लज़ीन हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीन हुम युराउन व यमनाउन अल माउन। सूरत माउन 4-7। तो रियाकार की तो नमाजें भी उसके लिए मुश्किल पड़ जाती है। इसी तरह सूरत अनफाल 47, अल्लाह ताला कहते हैं, वला तकूनु कल्लज़ीन खरजू मिन दियारी बतरं व रिया नास। उन लोगों जैसे रंग ढंग ना अख्तियार करो जो अपने घरों से निकले लोगों को अपनी शान दिखाते हुए, और असल में वो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। क्या इसको सुनकर कोई एक शादी का पंप एंड शो और ग्लैमर नहीं नज़र आ रहा? किस तरह बरातें सच सच के जाती हैं, कैसे घोड़ों पे बैठकर, कैसे बगियों पे बैठकर, सिर्फ इसलिए कि लोग कहें कि क्या शादी की है। तो याद रखिए कि अच्छे काम में भी और दुनिया के काम में भी दिखावा रियाकारी बदतरीन अमल है। बुखारी की रिवायत है 6499 और मुस्लिम 7477, अब्दुल्ला बिन अब्बास से, अल्लाह के नबी ने फरमाया, यानी किसी नेक काम के नतीजे में जो शोहरत का तालिब हो, अल्लाह ताला इसकी बदनीयती क़यामत के दिन सबको सुना देगा। इस तरह जो कोई लोगों को दिखाने के लिए नेक काम करेगा, अल्लाह भी क़यामत के दिन इनको सब लोगों को दिखा देगा। बड़ा डरना चाहिए। और याद रखे, ये नहीं छुपता। नीयत एक ऐसा अल्लाह ताला ने अंदर छुपा कर रखा हुआ बीज है, ये खोटी होती है ना, दुनिया देखती है बाद में। ज़िंदगी में ना भी हो ना, आपके बाद आ जाएगा, लोग कहेंगे ये फलां जो था ये ऐसे ही था, बज़ाहर बहुत नेक लगता था लेकिन नेक नहीं था। और अल्लाह ताला आपको मुझे कभी इसकी तौफीक भी ना अता फरमाए। इसी तरह से आप देखिए कि ये जो टॉपिक है, इस पे हमें ख़ुद पे गौर करना है, क्योंकि ये कोई दूसरा नहीं देख सकता। अल्लाह ने नीयत को इसीलिए तो छुपा दिया कि किसी और से बात ही ना हो। और वो हदीस भी आपने सुनी होगी, बुखारी की 2810, आपने फरमाया, एक शख्स जंग में जाता है ताकि नामवरी भी हो, कुछ बहादुरी की धाक भी, और साथ साथ अल्लाह के दीन को भी फ़ायदा हो। फरमाया ये उसका अमल अल्लाह के लिए नहीं है, सिर्फ एक इरादे से जंग में शरीक होना, अल्लाह के कलमे को बुलंद करना। मैं इस हदीस पे जब भी आती हूँ दिल कांप के रह जाता है, अल्लाह ताला कैसे अपना मुहासबा करे। देखिए ना, जब आप एक काम करते हैं और मुस्तकिल करते हैं, आदत बन जाती है। कभी कभी आदतन भी आप वो नेकी कर रहे हैं, जिस दिन घर से निकले, जब निकले, आप पढ़ने आ रहे हैं ना, आप क्यों पढ़ रहे हैं पता है आपको? ही अल कलीमतुल्लाहिल उल्या, आपके अल्लाह, मैं एक मुसलमान शहरी हूँ, मैंने इस्लाम सीख कर, इस्लाम पे अमल करके इस्लाम के झंडे को बुलंद करना है। अब आप और मैं किसी मैदान जंग में तो नहीं निकल रहे ना, और अल्लाह ना करे इसकी नौबत आए, आप मैं हर एक मुआशरे में चलते फिरते एम्बेसडर ऑफ इस्लाम है, इसके लिए कोशिश करनी है, और बाकी इसके अलावा सब दूसरी बातें। और याद कीजिए वो रिवायत भी आपने शायद सुनी होगी, अबू मसूद अल अंसारी कहते हैं कि जब सदक़े की आयत नाजिल हुई तो हम बोझ ढोने का काम करते थे, यानी मजदूरी करते, ताकि उसके बाद कुछ पैसे मिलें और सदका कर दें। एक शख्स जिनका नाम था, आप सब उनसे मिल चुके हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ आए, और उन्होंने सदक़े के तौर पर बहुत सारी चीज़ें दी, खूब ज़्यादा माल दिया। इस पे कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया, देखो देखो रियाकार है, दिखाने के लिए इतना माल दे रहे हैं ताकि वाह वाह हो जाए। इतनी ही देर गुजरी कि एक शख्स बेचारा अबू अकील, गरीब सहाबी, क्या किया था इन्होंने, सारी रात एक यहूदी का कुआं चलाया और एक सा किलो कह लीजिए अपनी जुबान में खजूरें ली, और लाकर जब ये खजूरें देती देखी तो मुनाफिक, और देखो जी ये चले रोम को फतह करने और खजूरें मुट्ठी भर, उस पर भी बातें छांटी। ज़्यादा देने वाले को रियाकार कह दिया, थोड़े देने वाले के लिए कहा अल्लाह को इसके सदक़े की क्या ज़रूरत है। इस पर वो आयत नाजिल हुई थी सूरह तौबा 89, वो लोग हैं जो मोमिनों पर ऐब लगाते हैं, जो सदका ज़्यादा देते हैं उन पर भी, और जो मेहनत से कमा लाते हैं उन पर भी। और बुखारी में ये रिवायत आप ख़ुद भी पढ़ सकती हैं, 1415। तो बात लोग अच्छा करने वाले को भी बुरा ही कहते हैं, बुरा करने वाले को तो पता नहीं वो क्या कहते होंगे। और वो हदीस आपने सुनी है जिन तीन लोगों से जहन्नुम की आग सुलगाई जाएगी, उसमें से एक रियाकार, सारी रियाकार हैं बेसिकली, कारी है तो रियाकारी के लिए, सखी है तो रियाकारी के लिए, और तीसरा शहीद है तो रियाकारी के लिए। तो कितना सख्त मेयार है, और वाकई अंदर बाहर की इसलाह किए बग़ैर इस रास्ते में कूदना ये आसान नहीं है। और ये जो वलीमे किए जाते हैं बड़े बड़े सुन्नत के नाम पे, उसकी हदीसें मेरे हाले कुछ 10 हदीसों के हवाले हैं, मैं एक बोल देती हूँ जो भी आपको याद है तो लिख लें, अबू दो 3745। एक शख्स था अब्दुल्ला बिन उस्मान, कहते हैं कि मैंने एक काने शख्स से सुना जो कबीला सकीफ़ में था, और भलाई करने की वजह से लोग उसको मारूफ कहते थे, मारूफ मीन उर्फ से नेकियों वाला। खैर इसका नाम ज़हीर बिन उस्मान नहीं तो कुछ भी, खैर वो कहते हैं कि उस शख्स ने कहा, हदीस यहाँ से शुरू होती है, वलीमे के पहले दिन का खाना हक है और दूसरे रोज़ का खाना नेकी है, लेकिन तीसरे दिन के बाद रियाकारी और नमूदो नुमाइश है। बात समझ गए, भारी दावतें, और सिर्फ नाम लेना खिलाने पिलाने का नहीं, ऐसा नहीं है। और कहते हैं मुसैद बिन मुसैब के पहले दिन दावत की तो उन्होंने लोगों कबूल कर ली, दूसरे दिन कबूल की, तीसरे दिन फिर उन्होंने किसी की दावत की तो उन्होंने कहा नहीं ये तो नमूदो नुमाइश की दावतें हैं, मैं इसको कबूल नहीं करता। फिर इसी तरह से आप देखिए अल्लाह के नबी की एक रिवायत मिस्तवर बिन शिद्दात से, जो शख्स किसी मुसलमान भाई का ऐब जिक्र करके एक नवाला खाए तो अल्लाह ताला इस शख्स को दोजख से इसी कदर नवाला खिलाएगा, और जो शख्स किसी मुसलमान का ऐब जिक्र करके एक कपड़ा पहनेगा तो अल्लाह ताला इस शख्स को दोजख से इसी कदर कपड़ा पहनाएगा, और जो शख्स किसी शख्स को किसी वजह से रियाकारी और तशखीर के मुकाम पर पहुंचाए तो अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ उसे वहीं खड़ा करेगा जहां पर इसकी अच्छी तरह से शोहरत हो। यह अबू दाऊद की रिवायत है 4881। सोच के बोले, बिलीव मी लोगों को ऐसे ना डिस्कस करें, आप अपने पाँव पे ख़ुद कुल्हाड़ी मारेंगे अगर आप लोगों को डिस्कस करते रहें। और मैंने एक चीज़ इतनी फ़ायदेमंद पाई है, एक दो लफ्ज़ों की हदीस है, नजा मन समत, चुप रहना खामोशी, ये बेहतरी है। कामयाब हो गया, निजात पा गया जो चुप रहा, चुप रहे, काम बोले, जिक्र करते रहें, अस्तगफार करें, अपनी ड्यूटी पे बैठें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जो अल्लाह के साथ मामला चल रहा हो उसी तरह की दुआएं मांगते रहिएगा। बहुत बोलने वाले बहुत गलतियां करते हैं, तो पक्की बात है जो ज़्यादा करेगा वो ज़्यादा गलतियां करेगा। और आपको पता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जुब्बे हुजन से पनाह मांगो, जुब कहते हैं कुएँ को, हुजन गम, गम के कुएँ से पनाह मांगो। पूछा अल्लाह के नबी ये क्या है, फरमाइए जहन्नम का एक नाला है जिससे जहन्नम दिन में 100 बार पनाह मांगती है। कहा अल्लाह के नबी, इसमें कौन लोग दाखिल किए जाएंगे? फरमाया वो कारी जो अपने अमलों में रिया करते थे, और बदतरीन कारी अल्लाह के आगे वो हैं जो उमरा की तरफ चलते फिरते हैं, यानी बादशाहों के इर्द गिर्द फिरते रहते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे उनकी शोहरतें हैं। मुराद क्या है कि जालिम हुक्मरानों के आगे पीछे। इब्ने माजा की रिवायत है 256। बहुत डरने की ज़रूरत है, बुरे काम करके तो जहन्नुम में गए, अच्छे काम करके जहन्नुम में जाना है हमने। अल्लाह हम सबको इससे बचा के रखे। और रिया को शिरक असगर भी कहा जाता है। अहमद की रिवायत है 24036। मास बिन जबल कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिहाद दो किस्म का है, एक वो जो रज़ाए इलाही के लिए किया जाए, अल्लाह की रज़ा पाने के लिए, कौन सा? जिसमें इमाम की इत्तबा की जाए। ये आज के दौर में बहुत सारे लोगों का सवाल है, आज के दौर में ये जिहाद है, ये फलां जिहाद है कि नहीं, पूछते हैं ना लोग कई सवाल। तो याद रखिए, जिहाद इमाम की इमामत के बगैर नहीं है, आपके मेरे करने का काम नहीं है ये। आज भी याद रखिए, इज्तमाईयत को तोड़कर अगर आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं ना, उस लिहाज से इस चीज़ को सामने रखें। फरमाया जिहाद एक है, नंबर एक रज़ा अल्लाह की, बट इमाम की लीडरशिप में, इसमें राहे इलाही में बेहतर से बेहतर माल खर्च किया जाता है, साथी के साथ भाईचारगी और मोहब्बत की जाती है, शर और फसाद से परहेज़ किया जाता है, यानी जब कोई काम अल्लाह के लिए होता है तो फिर साथ ये सारी चीज़ें खुद ही मिलती हैं। ऐसे शख्स का, सुनिएगा, इस किस्म के जिहाद में सोना जागना तमाम इबादत है। आप थोड़ा सा इस पर लें, अल्लाह करे कि अल्लाह उन सारे अंसारुल्लाह को इसमें शामिल कर लें जो इस जिद्दोजहद में साथ है। मैं उनके लिए रात दिन दुआ करती हूँ। आप देखिए कि आप सोते भी इसलिए ना कि सुबह जल्दी उठना है, और सुबह सारा दिन काम इसलिए कर लिया कि रात को आराम कर ले। सोना जागना भी अल्लाह के हाँ आपका सदका लिखा जा रहा है, क्योंकि आप उसके दीन की बुलंदी के लिए काम करें। आप कल जाके झंडे उठाने पड़े, तीर तलवार उठाने पड़े, वो तो कल की बात है। आज आप लोग, आपके हाथ कलम चल रहे हैं ना इस वक्त, यहाँ जब आते हैं कागज़ कलम लेते हैं, बैठते हैं गाड़ी में बैठते हैं, वल्लाही 2 सेकंड चले, 10 सेकंड, 1 मिनट के अंदर अल्लाह से बातें किया करें। अल्लाह जी, मैं इसलिए जा रही हूँ कि मेरे कॉन्सेप्ट ठीक हों, मैं और अच्छा सीखूँ, कमी पेशियाँ दूर करूँ, मेरे अंदर के ऐब दूर हों, ताकि मैं आपके दीन को सर्व करूँ। आज अगर आप नियत करते हैं ना कि आपने अंसारुल्लाह बनना है, ये हदीस आपको बता रही है, मैं नहीं बोल रही, आपका फिर सोना जागना भी इबादत है। ये है कुल इन्नस्सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाही रब्बिल आलमीन। मोमिन कभी पार्ट टाइम मोमिन नहीं हो सकता, मुजाहिद कभी पार्ट टाइम मुजाहिद नहीं होता। और इसके बाद अगली अपोजिट थिंग, पहला जिहाद तो अल्लाह के राह का था ना, और दूसरी जिद्दोजहद जो अपनी बड़ाई के इजहार, अपना रुतबा दिखाने और सुनाने के लिए हो, और अपने अमीर की नाराज़गी और ज़मीन में फसाद और शर फैलाना मकसूद हो, तो ऐसा आदमी कुछ भी लेकर नहीं आएगा। यह अबू दाऊद की रिवायत है 2515। और हाकिम फिल मस्तदरक, यानी हाकिम की जो किताब है उसमें 85 नंबर की रिवायत है, पार्ट 2। कितना खौफनाक बात है। तो हमेशा याद रखें, इज्तमाईयत को कायम रखते हुए अल्लाह के रास्ते में भाग दौड़ करें और जाएं दुनिया से। आप इंतज़ार करें अपने दुनिया से जाने का कि मैंने अपना हिस्सा डाल दिया, अल्लाह बाकियों से ले ले। सुरखरू हो जाएंगे, आज मरें कल सब खत्म, चूंकि मेरी ज़ात थी, मेरे ज़ात पे था। याद रखिए, रियाकारी खुद नहीं पता चलती, लेकिन ये जो वन मैन शो का लफ्ज़ आपने कभी सुना है ज़िंदगी में? इधर बंदा मरा, काम ख़त्म होता है ना, अच्छे भी काम बुरे भी काम। आज भी आप अगर पूरी दुनिया में देखिए मुसलमानों को, सबसे ज़्यादा बड़ा सदमा तो उम्मत पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाने की बात थी ना। आपके बाद जो साहब खड़े हो गए, जिस सच्चाई की दलील थी, वजल लिसान असदकिन फिल आखिरीन, क्या कहा हज़रत इब्राहिम ने, अल्लाह मुझे नेकों का साथ दे, रब्बी हबली हुक्मन वल्हिकनी बिस्सालिहीन वजल्ली लिसान असदकिन फिल आखिरीन। ये दुआ मांग के जाएं दुनिया से, अल्लाह ज़िंदगी में मुझे नेक साथी दे, और जो दे दिए मैं उस पर खुश हूँ, वो जैसे भी है, मेरा यही नसीब थे, मुझे ज़्यादा नेक नहीं चाहिए, मुझे इससे अच्छे, इतने से ज़्यादा इफ़ेक्टिव और इससे बहुत स्किल्ड नहीं चाहिए कि इनको निकाल कर दूसरों को ले आऊँ। यकीन करें, मैं अपने अंदर इस चीज़ की इतनी हिरस पाती हूँ कि एक बंदे से कभी एक दफ़ा सलाम भी हो गई है ना, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। इट्स माय वीक पॉइंट। एक वो वक्त था कि 20 लोग क्लास में होते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह 200-300 लोग हैं जिनके साथ वर्ल्ड वाइड सिर्फ एज एडमिन काम होता है। लेकिन मुझे उन सब के नाम उंगलियों की पोरों पर याद हैं जिनके साथ मैंने जहाँ भी फर्स्ट हैंड काम किया। करवटों में अलाक जुनूबी हैं, वाह करवटों में उनके लिए दुआएं हैं। और इस ट्रिप में मैं इस बार में इतनी ब्लेस्ड हूँ, यूएसए का ये ट्रिप मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन ट्रिप है क्योंकि मुझे अपने सारे प्यारे मिले हैं और कुछ मिल जाएंगे और भी। और इतनी खुशी होती है ऐसे क्या कोई सगी बहन भाई और अपने खून के रिश्तों के मिलके, क्यों कि ये बुनियादों में लोग थे, इनको मैं नहीं छोड़ सकती। वो मुझे छोड़ जाएं, वो छोड़ जाएं से मुराद ये होता है ना कि बेटियां घरों में गईं तो मैके को भूल जाती हैं, कभी अपनी मसरूफियात हैं, महीनों बारी बात ना हो, आई डोंट माइंड इट। वो अपना हिस्सा डाल गए और उसको नहीं छोड़ना। और इस शहर में आप हैं अपने हिस्से लेने वाले। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे आपके नाम कभी भी ज़िंदगी में भूलेंगे। अगले सालों में देखिएगा कितने कोर्सेज आएंगे। आपका ये स्कूल इतना तो नहीं रहना, ये मेरी दुआ है आपको। ये इससे 70 गुना बढ़े, अल्लाह करे इससे भी 700 गुना पे बढ़े। इसकी गली कोने कोने में कुरान की गलबे और इस्लाम के लिए काम हो। आप डिसिप्लिन के साथ तरीके के साथ काम करें, अल्लाह पूरे शहर में कुरान का नूर भरते हैं। हमने और क्या लेना देना, हमें झंडे नहीं लगाने, हमें नाम नहीं चाहिए, लेकिन काम तो करना है ना। तो अब आप देखिए कि ये हदीस ने मुझे इमोशनल कर दिया कि या फिर अल्लाह के दीन के बुलंदी के लिए कर रहे हो या अपने झंडे लगा रहे हो, दोनों में दो मुख्तलिफ इंजाम है। अल्लाह ताला हमें आपको रियाकारी और दिखावे से बचाए। और मुस्नद अहमद की रिवायत 126 शद्दाद बिन औस से फरमाया, अल्लाह के नबी को फरमाते हुए सुना, मन सल्ला युराई फ़कद अशरका, जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। अल्लाह की बना नमाज और शिर्क। और मन साम युराई फ़कद अशरका, जिसने रोज़ा रखा और शिर्क किया यानी दिखावे के लिए। व मन तसद्दक युराई फ़कद अशरका, और सदका किया तो दिखावे का किया। और वो जो तवील हदीस मैंने आपको बताई है उसका हवाला लिख ले, वो है बहुत प्यारी, आपको उसमें भी मिल जाएगी। हर तफहीम सुन्ना किताब के शुरू में तीन लोगों से जहन्नुम को भड़काया जाएगा। बल्कि जो मेरे सामने इस वक्त हदीस है वो तो बहुत लंबी है और इसमें इतना कुछ है, लेकिन अभी मैं इस पर ज़्यादा वक्त दे नहीं सकती। मुस्लिम की रिवायत खुद जाके सही मुस्लिम में पढ़िए 4923। किस तरीके से अल्लाह क़यामत के दिन सवाल जवाब करेगा, क्यों ना हाथ ठंडे हों, क्यों ना हज़रत ईसा उसे घबरा रहे हों, क्यों ना उसे नबिया कराम नफसी नफसी पुकारें, क्योंकि नेक काम करने वालों से इस हदीस में सवाल जवाब हो रहे। इधर आओ भाई, इधर आओ, कमन क्यों किया था, नीयत क्या थी, इरादा क्या था, तरीका क्या था, कर क्यों रहे थे। और हज़रत उमर की हदीस, इन्नमल आमालु बिन्नियात, बुखारी की पहली हदीस। सूरत फत को देख लीजिए, पहली आयत सही मुस्लिम 1907। और आखिरी बात करके आगे चली जाऊंगी, मुस्लिम 7475 अबू हुरैरा से रिवायत है, फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है, ये अल्लाह की ज़ात है, क्या कहता है अल्लाह ताला, मैं शिर्क करने वालों के शिर्क से बेपरवाह हूँ। जो आदमी कोई ऐसा काम करे जिसमें मेरे अलावा मेरा कोई और शरीक हो तो मैं इसको भी और इसके शिर्क को भी छोड़ देता हूँ, टेक इट। अल्लाह को शराकत नहीं पसंद, तो अल्लाह मेरी आपके आमाल के खोट और कमी बेशियों को दूर कर दे। अगली बुरी चीज़ जो हकीकत में आज उम्मत को डस रही है, जिस पे तो वाकई फिर बड़ा ग्रज है दिल में, और वो सुस्ती है, आजजी और सुस्ती। आज उम्मत सुस्त पड़ी बैठी है, आज आजिज बैठे, हम कहते हैं मजबूरी बड़े हैं, दुखी बड़े हैं। आपको मेरे गम नहीं पता, आपको मेरे मसले नहीं पता, आपको प्रॉब्लम्स नहीं पता। क्या प्रॉब्लम है आपका, खाने का, पीने का, पहनने का? 4 दिन बाद कहीं जाना होता है, हम 8 दिन पहले उससे परेशान हो चुके होते हैं। 6 माह बाद शादी होती है, हम पहले ही सुस्त होकर बैठ जाते हैं। ये हमने दीन को देना है, ये सीखा है हमने। याद रखिए, अल्लाह के नबी दुआ मांगा करते थे, आपने कई बार पढ़ी होगी लेकिन आप इसको याद करें। मैंने इसलिए नहीं डलवाई नोट्स में कि लंबी दुआ है, लेकिन दुआ आप सब मैं बोलती हूँ तो आपको याद आ जाएगी। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ी वल कसली वल जुबनी वल बुखली वल हरमी वल कसवती वल गफलती वल ऐलती वल जिल्लती वल मस्कना, यानी इसमें 10-12 चीज़ें हैं। ए अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ आजजी से, आप सब पे आमीन के। ए अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगती हूँ आजजी से और सुस्ती से, बुजदिली से, कर्ज से, बुखल से, इंतहाई बुढ़ापे से, अर्जल उम्र, सख्ती और गफलत से, ज़िल्लत और नादारी से, اور تیری پناہ مانگتی ہوں محتاجی اور کفر سے، نافرمانی سے، مخالفت سے. یہ مخالفت کیا ہوتی ہے؟ دین کی مخالفت. اللہ اکبر. پھر اگلی چیز نفاق سے، بری شہرت سے، دکھاوے سے. اور میں پناہ مانگتی ہوں بہرے پن سے اور گونگا ہونے سے اور پاگل پن سے، کوڑ ہونی سے یعنی لیپرسی، اور برس سے اور تمام بری بیماریوں سے. کتنی جامع دعا ہے، کتنی چیزیں گنی ہم نے، کم از کم 15 چیزیں. یہ الحاکم اور بیہقی کی روایت الجامع میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کا مختصر ورژن بھی ہے صحیح مسلم 6873. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والبخل، واعوذ بک من عذاب القبر من فتنة المحیا والممات. یہ تو آپ لوگوں نے کئی دعاؤں میں یاد کی ہوگی، تو یہ بھی دعا موجود ہے.